ಗೌತಮೋಗಣಿ ಮಂಗಲಂ ಕುಂದ ಕುಂದಾರ್ಯೋ ಜೈನ ಧರ್ಮೋಸ್ತು ಮಂಗಲಂ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಸರ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಕಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ ಜೈನಂ ಜಯತು ಶಾಸನಂ ನಮಃ ಸಮಯ ಸಾರಾಯ ಸ್ವಾನುಭೂತ್ಯಾಚಕಾಸಿತಿ ಚಿಸ್ಸಭಾವಾಯ ಭಾವಾಯ ಸರ್ವಭಾವಾಂತರಚ್ಛಿದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಜಚಂದ್ರ ವಚನಾಮೃತ ಕೃಪಾಲು ದೇವ್ ಕೆ 128 ನಂಬರ್ ಕೆ ಪತ್ರಾಂಕ ಪರ ಹಮಾರಿ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ ರಹೀ ಹೈ. ಔರ್ ದೇಖೋ ಯೇ ಜೋ ಪತ್ರ ಹೈ ಯೇ 23ವೇ ವರ್ಷ ಮೇ ಲಿಖಾ ಗಯಾ ಪತ್ರ ಹೈ. ಇಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸೇ ಭಿ ಅಪನ್ ವಿಚಾರ ಕರೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಕಿ ನಿಕಟ ಭೂಮಿಕಾ ಮೇ ಆಯೇ ಹೈ ಉಸ್ ಸಮಯ ಮೇ 3 ಮಹೀನೆ ಪಹಲೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಕೆ 3 ಮಹೀನೆ ಪಹಲೆ ಹೈ ನಾ, ಏಕದಮ್ ನಿಕಟ ಕಿ ಭೂಮಿಕಾ ಹೈ. ಔರ್ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಿ ಬಾತ್ ಉಮ್ರ ಕಿತನಿ ಹೈ, ಮಾತ್ರ 23 ವರ್ಷ ಕಿ ಉಮ್ರ ಹೈ. ಜಿಸ್ ಉಮ್ರ ಮೇ ಸಾಮಾನ್ಯತ ಲೋಗ್ ಕಿಸ್ ತರಹ ಕೆ ಗೋರಖ ಧಂಧೋ ಮೇ ಪಡೆ ರಹತೆ ಹೈ ಯಾ ನಯೆ ನಯೆ ಉಪಕ್ರಮ ಖೋಜತೆ ರಹತೆ ಹೈ, ಯೇ ಕರ್ನಾ ಹೈ ವೋ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಅಭಿ ಏಸಾ ಸಂಸಾರ ಮನೆ ಜಬ್ ಸಾರಿ ದುನಿಯಾ ಔರ್ ದುನಿಯಾ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸಂಸಾರ ಕೋ ಬಢಾನೆ ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಮೇ ಆಗೇ ಬಢತೆ ಹೈ. ಯೇ ತೋ ಉಮ್ರ ಏಸಿ ಹೋತಿ ನಾ, ಅಭಿ ತೋ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ ನಾ. ಏಸಿ ಉಮ್ರ ಮೇ ಉನ್ಕೋ ಕಿಸ್ ಚೀಜ್ ಕಿ ಚಿಂತನಾ ಹೋ ಪಡಿ, ಜನಮ ಮರಣ ಕಾ ಅಭಾವ ಕೇಸೆ ಹೋ, ಯೇ ಸೋಚೋ ಆಪ್. ಕೋಯಿ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಅಪನ್ ಲೋಗೋ ಕಾ ಕೆ ಅಪನ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಇಸ್ ಯುಗ ಮೇ ಏಸೆ ಏಸೆ ಜ್ಞಾನಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮಾವೋ ಕೆ ವಚನೋ ಕಾ ರಸ್ಪಾನ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ. ಕೃಪಾಲು ದೇವ್ ಹೈ, ಪೂಜ್ಯ ಗುರುದೇವ್ ಶ್ರೀ ಹೈ, ಪೂಜ್ಯ ಬಹಿನ್ ಶ್ರೀ ಹೈ, ಪೂಜ್ಯ ಸೋಗಾನಿ ಜೀ ಹೈ, ಏಸೆ ಏಸೆ ಜ್ಞಾನಿ ಕೆ ಜಿನ್ನೋನೆ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಕೆ ಅಪನೆ ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಗ ಕಾ ಸಂಬೋಧನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಆಮಂತ್ರಣ ಕಿಯಾ ಹೈ ಅಪನೆ ಕೋ, ಏಕ ತರಹ ಸೆ ಆಹ್ವಾನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ನಾ. ಐಸಿ ಅದ್ಭುತ ಬಾತ್ ಹೈ. ದೇಖೋ ಇಸ್ ಪತ್ರ ಮೇ 128 ಪತ್ರ ಮೇ ಅಪನಿ ಚರ್ಚಾ ಯಹಾಂ ತಕ್ ಹೋ ಗಯಿ ಹೈ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪನಾ ಇಸ್ಕಾ ಯೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ, ಯಹಾಂ ಚಲ್ ರಹಾ ಥಾ. ಅಧಿಕ ಕ್ಯಾ ಕಹನಾ, ಜೋ ಪೂರ್ವ ಕೆ ಭವಾಂತರ ಮೇ ಭ್ರಾಂತಿ ರೂಪ ಸೆ ಭ್ರಮಣ ಕಿಯಾ, ಉಸ್ಕಾ ಸ್ಮರಣ ಹೋನೆ ಪರ್ ಅಬ್ ಕೇಸೆ ಜೀನಾ ಯಹ ಚಿಂತನಾ ಹೋ ಪಡಿ ಹೈ. ಬೋಲೋ ಅಪನೆ ಕೋ ತೋ ಅಭಿ ಇಸ್ ಚಿಂತಾ ಮೇ ಭಿ ಅಪನ್ ನೀ ಆಯೇ ಹೈ. ಅಪನೆ ಕೋ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಕಹಾಂ ತಕ್ ಈ ಜನಮ ಮರಣ ಕೆ ಚಕ್ರ ಚಲಾತೆ ರಹನಾ ಹೈ, ಆಖಿರ್ ಕಬ್ ಹಮಾರಾ ಛುಟಕಾರಾ ಹೋಗಾ, ಕ್ಯಾ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಗತಿಯೋ ಮೇ ಭವ ಧಾರಣ ಕರ್ ಕರ್ಕೆ ಹೀ ಹಮೆ ಅಪನಾ ಅನಂತ ಕಾಲ ವ್ಯತೀತ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಏಸಾ ವಿಚಾರ ಭಿ ಅಪನೆ ಅಂದರ್ ಮೇ ಉದಿತ ನೀ ಹೋತಾ. ಔರ್ ಬಹು ಪುಣ್ಯ ಕೇರಾ ಪುಂಜತಿ ಇಸ್ಮೇ ಲಿಖಾ ನಾ, ಇಸ್ಕಾ ವಿವೇಕ ವಿಚಾರ ಇಸ್ಕಾ ವಿಚಾರ ವಿವೇಕ ಪೂರ್ವಕ ಶಾಂತ ಭಾವೆ ಜೆ ಕರೆ. ವಿಚಾರ ತೋ ಕರೇ ಮನೆ ಅಭಿ ಅಪನ್ ಜರಾ ಕಲ್ಪನಾ ಕರೆ, ಕಿತ್ನಿ ಉಮ್ರ ಥಿ ಕುಲ್ ಮಿಲಾ ಕರ್ಕೆ ಉಮ್ರ ಮಿಲಿ ಲಗಭಗ 33 ವರ್ಷ. 33 ವರ್ಷ ಔರ್ ಅಪನ್ ಜಿತನೆ ಭಿ ಲೋಗ್ ಯಹಾಂ ಬೈಠೆ ಹೈ, ಮುಜೆ ನಹೀಂ ನಜರ್ ಆತಾ ಕಿ 33 ವರ್ಷ ಸೆ ಕೋಯಿ ನೀಚೆ ಕಾ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೈ, ಹೋ ಭಿ ಹೈ ನಾ. ಅಬ್ ಸೋಚೋ ಜರಾ ಕಿ ವೋ 33 ವರ್ಷ ಮೇ ತೋ ಭವ ಕಾ ಅಭಾವ ಕರ್ಕೆ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಭವ ಕಾ ಅಭಾವ ಖುದ್ ಕೆ ಭವ ಕಾ ತೋ ಅಭಾವ ಕಿಯಾ ಹೀ, ಸಾಥ ಮೇ ಅನಂತ ಅನೇಕ ಜೀವೋ ಕೋ ಭವ ಕೆ ಅಭಾವ ಕಾ ಮಾರ್ಗ ಬತಾ ಕರ್ಕೆ ಚಲೆ ಗಯೆ. ಗುರುದೇವ್ ಕಿ ಭಾಷಾ ಮೇ ಕಹೇ तो एकावतारी पना माने कितना प्रचंड पुरुषार्थ होगा उसकी आप और हम कल्पना ही कर सकते हैं। केवल कितना प्रचंड पुरुषार्थ होगा, 33 साल की उम्र में एकावतारी पना, मैंने समझ लो 24 वर्ष की उम्र में या उनको सम्यक दर्शन हुआ मान लीजिए, तो कितने साल मिले इस भव में, कितने साल मिले सम्यक दर्शन के बाद? 9 वर्ष। और 9 वर्ष में एकावतारी पना, तो गुरुदेव के मुख से सुना है ना अपन लोगों ने, हाँ, एकावतारी महापुरुष हो गए, तो एक कितना प्रचंड पुरुषार्थ होगा अंदर में, जरा ये सोचे अपन, है ना, कि वो 23 वर्ष की उम्र में, अभी सम्यक तो नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना जरा बात को, सम्यक तो नहीं होने पर भी सम्यक तो होने की भूमिका में आ गए हैं, अभी निकट काल में सम्यक तो होने वाला है, उसके उस भूमिका में आने पर आत्मा में कैसे दृढ़ संस्कार आ गए कि जन्म मरण अब तो करना ही नहीं, तब सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाए और उस ज्ञानी को अपनी मुक्ति की निशंक प्रतीति आ जावे, इसमें कौन सा आश्चर्य है। अरे जब सम्यक दर्शन प्राप्ति की भूमिका में भी ऐसे दृढ़ता के संस्कार अंदर में आ जाते हो, तो जब सम्यक दर्शन हो गया हो और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब अगर अपनी मुक्ति की प्रतीति आवे, अब मुझे इस संसार में बांधने वाला ऐसी कोई कारमान वर्गना नहीं बंधी, कोई कारमान वर्गना विश्व में नहीं है कि जो मुझे अनंत काल तक संसार में भटका सके, भटकाने में, भटका सके या तो निमित्त की ओर से भाषा बोल रहे हैं अपन, भटका सके माने भटकाने में निमित्त तो हो सके, ऐसी कोई कारमान वर्गना विश्व में नहीं है। विश्व माने अपना भारत दिखता इतना ही नहीं, 3 लोक उसका विश्व बोलते ना, तो वो पूरे विश्व में ऐसी कोई वर्गना नहीं है, ऐसा कोई परिणाम नहीं है कि जो मुझे अब अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करा सके। यह प्रतीति किसको देख करके आती है, किसको देख करके आती है? अरे भव और भव के भाव रहित शुद्धात्मा को देखे और भव के अभाव की प्रतीति न आवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री के जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था सोनगढ़ में मानस स्तंभ का, है ना, और उस मानस स्तंभ के अंदर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में पूज्य गुरुदेव श्री ने एक प्रवचन किया था, जो अपने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के प्रवचनों की किताब छपी है ना, उसमें वो प्रवचन अपन लोगों ने डाला है, उसमें गुरुदेव ने ये बात बोली है बहुत दृढ़ता के साथ, मुक्ति की निशंक प्रतीति आ जाती है। पता नहीं भैया, हम पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, सम्यक दर्शन तो कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं हम गिर जाएंगे तो, हम पड़ जाएंगे तो, हमारा सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो, है ना। गुरुदेव बोलते थे ऐसे गिरने पड़ने की बात यहां होती नहीं है, है ना, वही बात यहां पे उसी भाषा में देखो, अधिक क्या कहना, जो जो पूर्व के भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया, ये सब चर्चा हुई थी कल थोड़ी अपनी, भ्रांति एकमात्र कारण है भ्रांति, आत्मा को आत्मा के संबंध में भ्रांति, और इस भ्रांति से बड़ा भ्रमण का दूसरा कोई कारण नहीं है। ऐसा जो हुआ था किया उसका स्मरण होने पर, अरे देखो इनको तो कैसा स्मरण हो गया, अपने को तो पिछला भव याद नहीं, देखो स्मरण होने पर, तो स्मरण होने पर यह बात भी कह रहे हैं ना, कोई शास्त्र की पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहे, तो आत्मा अनंत भवों से भटक रहा है, कितने कितने भवों का जाति स्मरण हुआ है। नयन श्री का ज्ञान वैभव अगर आप लोग पढ़े या पढ़ा होगा तो उसमें एक बात आती है ना, कि उन्होंने देव गति में से एक बार अवधि ज्ञान का प्रयोग किया और नरक के दुखों को साक्षात देखा अवधि ज्ञान के द्वारा, है ना, और वो सब उनको उनके जाति स्मरण ज्ञान में आए कि नरक में जीव कैसे दुख भोगता है, है ना। और उसके बाद पूर्व भवों का भी जो जो जाति स्मरण आया, किस 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 तरह के भवों से होते हुए, और आगे जो भव होंगे वो तो ठीक है, लेकिन किस किस भवों से होते हुए हम यहां तक आए। विदेह क्षेत्र में भगवान के निकट समो शरण में होने पर भी क्या ऐसा परिणाम हो गया कि पंचम काल में आकर के जन्म लेना पड़ा, वो तो उन ज्ञानियों के मुख से सुनो। आया क्या हता आने क्या आवी पड़िया, ये वचन उसमें ज्ञान विभव में तीन चार जगह ये बात लिखी है, क्या हता आने क्या आवी पड़िया। वो पढ़े ना तो वैराग्य आ जावे एक बार तो, कि क्या है ये दशा। तो जिनको कितने कितने भवों का जाति स्मरण, और वो जाति स्मरण भी मात्र 7 वर्ष की उम्र में हो गया हो, सोचो जरा। तो ये जो बात लिख रहे हैं ना, तो कि ये अब उसमें जाति स्मरण तो हो गया, लेकिन 7 वर्ष की उम्र में किस कारण से हुआ, अब वो कारण भी पता लगा कि अरे इन भवों के होने का दूसरा कोई कारण नहीं था, दूसरे किसी ने मुझे भव में नहीं भटकाया था कि कोई भगवान मेरे पे कुपित हो गए थे, है ना, और मैंने किसी भगवान की उपासना नहीं की थी इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था इसलिए मैं संसार में भटका, नहीं। अरे मैं अपनी भ्रांति के कारण से संसार में भटका, तो क्या कहा, भ्रांति रूप से भ्रमण किया, उसका स्मरण होने पर कैसे जीना, क्या इसी तरह जीना है, अब भव भ्रमण करते हुए ही जीना है। विचार का विषय है ये, खाली बुद्धि का विषय नहीं है, एक बात समझना, ये कोई सैद्धांतिक विषय नहीं है, ये एकदम प्रायोगिक विषय है कि अपने को ये विचार, उनको उन्होंने अपना अपना हृदय अपने सामने खोल करके रखा और उन्होंने कहा कि तुम भी ये विचार करो, तो कहते कि अब कैसे जीना यह चिंतना हो पड़ी है। आया आ गया, फिर क्या कहते हैं, फिर जन्म लेना ही नहीं, क्या भावना पैदा होती है कि चिंतना हो पड़ी तो उसमें से क्या निकला, क्या भाव निकले, कि फिर जन्म लेना ही नहीं, क्या मतलब। अरे मुनिराज ने देखो प्रवचन सार में एक बहुत अच्छा विषय आया, प्रवचन सार में, हालांकि यहां तो भ्रांति वाली बात की उन्होंने, एक प्रवचन सार में अस्थिरता की बात की, बीतरागी संत हैं, मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, तीन चौकड़ी कसाई का अभाव वर्तता है, और वे मुनिराज कहते हैं कि भाई साहब यदि ये राग का परिणमन मेरे जीवन में चलता रहा, महादुख संकट निकट है। और ये आपको पता है ना कि कोई भी भावलिंगी संत देह छोड़कर कौन से गति में जाते हैं, नियम से देवगति में जाते हैं, भावलिंगी संत है, नियम से, और देवगति में भी वैमानिक देव में जाते हैं, और वैमानिक देव में भी बहुत लंबे काल की आयु लेकर के जाते हैं, बड़ी वीआईपी सुविधा मिलती है वहां पे उनको, है ना। और उसके लिए वे संत क्या कह रहे हैं, महा दुख संकट निकट है। माने देखो ध्यान से इसमें समझने की बात क्या, तुलना क्या करना है कि अरे जब जिनकी मुक्ति नक्की है, जिनका मोक्ष नक्की हो गया है, भावलिंगी संत है ना, तो नियम से मुक्ति जाएंगे, और एकाध भव बीच में धर्मशाला के रूप में आ गया स्वर्ग का, वो भी कहते हैं कि महा दुख संकट निकट है, कि हमें तो ये राग में आ गए ना हम, कि ये हमें तो महा दुख संकट दिखाई दे रहा है। क्या मतलब, कि यहां से मर के हम स्वर्ग में जाएंगे, कि क्या होगा, स्वर्ग में जाओगे तो बहुत बढ़िया सुविधा में रहोगे, कि क्या बात करते हो, यहां क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर आत्मा के अतिंद्रिय आनंद का प्रति समय रसास्वादन करते हैं, यहां तीन चौकड़ी कसाई के अभाव की शांति है, और वहां तीन चौकड़ी कसाई के उदय की आकुलता रहेगी। स्वर्ग में जाएंगे तो कौन सा गुणस्थान आ जाएगा, चौथा गुणस्थान आ जाएगा, है ना, तो वो सातवें से छठे सातवें से चौथे में जाएंगे, यहां जीवन भर पंच महाव्रत का पालन किया और वहां इतने लंबे काल तक महाव्रत की बात तो छोड़ो, अणुव्रत के लायक नहीं रहेंगे, अव्रत आ जाएंगे ना, चौथा गुण स्थान है तो अव्रत आ गए, है ना। इसलिए मुनिराज कहते हैं कि भाई महादुख संकट निकट है। अरे मुनिराजों को वैमानिक का भव भी महादुख और संकट लगे, और हमें अपने इस भव का भरोसा नहीं कि इस भव के बाद हमें कौन सी गति मिलने वाली है। सोचना जरा कि हमारा यह नक्की नहीं, नक्की मतलब भगवान के ज्ञान में तो नक्की, हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सा भव मिलेगा। तत्व ज्ञान के संस्कार नहीं होवे, तत्व ज्ञान के मैंने तत्व ज्ञान का पक्ष लक्ष्य दक्ष नहीं होवे तो कौन सी गति में जीव जाकर के पड़ेगा। इस बात का पता नहीं होने पर भी अपन निश्चिंतता से सो रहे हैं। अपने को नींद कैसे आती है मुझे तो यह समझ में नहीं आता। मैं अपने सहित अपन सब लोगों की बात कर रहा हूं कि नींद कैसे आती है अपने को। अगर अपनी जेब में से 2000 का नोट खो जाए, छोटा सा है, तो 2000 का नोट खो जाए तो उसमें अपने को कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, जरा बोलना, कितने संकल्प विकल्प चलते हैं। गया कहां, मैंने जेब में रखा था, कौन ले गया, कितने संकल्प विकल्प, और ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प कि जिसके प्रति हमने कभी शक नहीं किया हो उसके प्रति भी संदेह के बादल मनराने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है, चित्त में अपने होता है, और अनादि काल से अपनी परिणति में अपनी आत्मा खो गया है, और हमें उस आत्मा के खोने का जरा भी संकल्प विकल्प नहीं। अरे संकल्प विकल्प करना है तो आत्मा क्यों नहीं प्राप्त होता, उसकी चिंतना में आ जाओ एक बार। आचार्य ये कहते, ज्ञानी ये कहते, श्रीमद जी ये कहते, कृपालु देव ये कहते कि उसकी चिंतना में आ जावे तो क्या लगेगा कि फिर जन्म लेना ही नहीं है ना। गुरुदेव बोलते थे ना एक भजन, है जगमा जन्म कलंक सम लागे मने, मारे जगमा जन्म फिर लेवो नथी, है ना, भजन में आया वो। और वो भजन भी बड़े म्यूजिक के साथ चाहिए हमको, कलंक की बात भी म्यूजिक के साथ चाहिए। क्या है जगमा जन्म मारे लेवो नथी, ये कॉल करार तो करें अपनी आत्मा के साथ, तो कॉल करार करें कि प्रभु आत्मा, हे चिदानंद प्रभु, तुम सिद्धालय में विराजमान होने लायक हो, और तुम्हें हमने अपनी ही भ्रांति से इस मलिन कारागृह में बैठा दिया। कैसा मलिन कारागृह, इस शरीर के ऊपर से ये जरा सी चमड़ी हटा के देखो। गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि जैसे गन्ने का छिल गन्ना चूसते हैं ना, तो गन्ना चूसने के लिए उसका छिलका उतारते हैं ना, इस शरीर में से चमड़ी का इतना सा छिलका उतर जाए तो इस शरीर की ओर देखने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। नव द्वार बहे जिस घिनकारी, ऐसा जो शरीर है कि ऐसे शरीर में अपनी आत्मा को अपन ने लाकर के डाल दिया भ्रांतिवश, किसी दूसरे ने नहीं किया यह अपराध। वो यहां पे कह रहे हैं कि भ्रम कि अब इससे क्या होगा कि यह चिंतना हो पड़ी है फिर जन्म लेना ही नहीं। ये तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो इस बात को, विचार करो, जन्म लेना ही नहीं, जन्म लेना ही नहीं, जन्म लेना ही नहीं, आया होगा विचार आगे, जन्म लेना ही नहीं और फिर ऐसा करना ही नहीं। क्या नहीं करना, भ्रांति नहीं करना, हुई सो हुई, अब ये भ्रांति का प्रत्याख्यान लेता हूं, अब इस जन्म मरण का प्रत्याख्यान लेता हूं। हमें क्या त्याग लेते हो कि नहीं, कुछ नियम है कि नहीं तुम्हारे, नहीं कहते लोग कुछ त्याग व्याग किया है, तो हमारी आत्मा में से आवाज उठनी चाहिए कि हां मैंने त्याग किया है। लेकिन किसका त्याग किया है, कि जन्म मरण का त्याग किया है, अब मैं जन्म मरण नहीं करूंगा, अब मैं परिभ्रमण नहीं करूंगा। ए स्मरण होने पर देखो आया ना, ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित तो होता है। ऐसी दृढ़ता कब आती है, कब आती है, कि जब भ्रांति रूप से भ्रमण किया इस बात का जब चिंतन होता है ना, आया ना यहां पे का अर्थ आया ना, देखो यहां से कब आता है कि अधिक जो जो पूर्व में भवांतर में भ्रांति रूप से भ्रमण किया उसका स्मरण होने पर, उसका स्मरण होने पर एक तो यह चिंतना हो जाती है कि कैसे जीना, दूसरा फिर अब जन्म लेना ही नहीं और ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है, ऐसी दृढ़ता अब नहीं लेना। अब कोई अपने को ललचावे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मोक्ष तो जाना ही है, चले जाना, लेकिन थोड़ा सर्वार्थ सिद्धि तो देख लो एक बार, बाद में नहीं मिलेगी, मिलेगी बाद में, बाद में केवल ज्ञान में देखोगे लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का आनंद नहीं ले सकते, केवल ज्ञान में जान सकते हो। कोई अपने को कितना भी ललचाने आवे, लालच में आए अपन कि भाई वो भी भव है, और जो भव है वो आत्मा के लिए कलंक है ना, कलंक नहीं आत्मा के लिए। अरे अजन्मा अमर तत्व को, अजन्मा और अमर तत्व को, भव और भव के भाव रहित तत्व को भव भ्रमण करना पड़े, ये शोभा की बात है कि कलंक की बात है, तुम किसकी बात करते हो? आचार्य देव कहते हैं प्रोज पंचास्तिकाय में कहते हैं कि अरे देव लोक के अंदर अंगारों में सिकेगा, ज्ञानी को स्वर्ग का भव भी अंगारा लगता है, सम्य दर्शन सहित भव है वो भी क्या लगता है उनको, अंगारा लगता है। ऐसा दृढ़त्व आत्मा में प्रकाशित होता है कि अब ऐसा करना ही नहीं, ऐसा दृढ़त्व होता है। परंतु कितनी ही निरूपायता है, ये देखो ये जरा बात, तो निरूपायता क्या मतलब क्या कि देखो भावना के स्तर पर दो बातें होती है, एक होती है भावना और एक होता है वर्तमान प्रारब्ध और पुरुषार्थ। भावना क्या होती है ज्ञानी की, वचनामृत में आया कि अगर इसी क्षण केवल ज्ञान होता हो तो अगला क्षण मुझे नहीं चाहिए, भावना का पावर इतना है। लेकिन निरूपायता है मान ऐसा प्रारब्ध है, ऐसा योग है कि जिस योग में से निकलना संभव नहीं, जैसे ज्ञानी को मुनि बनने की भावना होती है, संयम धरण सके पे संयम धारण की उर चटा चटी, श्रीमद् राजचंद जी को भी अपूर्व अवसर में जब उनके मुनि बनने की भावना उन्होंने किस शब्दों में व्यक्त की है ना, कि ऐसे शब्द आप ढूंढ के तो लाओ कहीं से, कि ऐसी भावना और उदय कैसा कि शरीर में ऐसी व्याधि कि मुनि दशा का भावना होने पर भी अंगीकार करने की योग्यता नहीं बन पाई। गुरुदेव श्री कितनी भावना भाते थे पंच कल्याण के प्रवचन में, जब अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे, है ना, सारे ज्ञानियों का तो एक ही रास्ता है ना, तो वो जब वो भावना भाते थे उस समय के प्रवचन गुरुदेव के आपने सुने, बहुत से लोगों ने गुरुदेव को साक्षात देखा, उस समय के गुरुदेव के प्रवचन, उनके चेहरे पर मंडराती वैराग्य की झलक, उनके नेत्रों में से झरते अश्रु, है ना, गलगलिया हो जाते थे, है ना, क्यों गलगलिया हो जाते थे, अरे मुनि बनने की भावना और बनने का योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव मुनि दशा के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिखाई नहीं दिया, ये हमारा प्रारब्ध है कि हम ऐसे काल में ऐसे क्षेत्र में पैदा हुए कि जहां पर मुनि दशा के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव वर्तमान में दिखाई नहीं देता, और भावना कैसी उछलती हुई है कि इसी समय मुनि दशा अंगीकार करके केवल ज्ञान लेना हो तो केवल ज्ञान मिलता हो, केवल ज्ञान की उपलब्धि होती हो तो मुझे अगला समय नहीं चाहिए। यह आता है ना प्रसंग कि जब भी गुरुदेव श्री स्टार ऑफ इंडिया में थे, तीन वर्ष 15 दिन वहां रहे, और रहने के बाद उनके लिए वो स्वदेह भवन बनाया गया, स्वदेह भवन बनाने की जब बात आई तो गुरुदेव ने क्या कहा था कि तुम मेरे लिए स्वदेह भवन बनाते हो तो मेरे कोई प्रतिबंध नहीं है कि मैं तुम्हारे बनाए हुए स्वदेह भवन में रहूंगा, मेरी वीतरागता बढ़ जाए तो मैं जंगल में भी चला जाऊं, है ना। देखो भावना का स्तर देखो, कभी मैं कभी कभी बोलता हूं खाली वस्त्र शरीर पर थे, बाकी महावृत्तियों जैसा जीवन था। आज ढूंढ के तो लाओ कोई ऐसा जीवन, बाहर का जीवन भी, अंतरंग का तो खैर है ही, बाहर का जीवन भी ऐसा ढूंढ के लाओ, लेकिन उदय ऐसा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं कि जहां मुनि पद लिया जा सके अथवा मुनि पद का निर्वाह निरतिचार रूप से हो सके। तो ज्ञानी खींचतान नहीं करते। फिर एक बात और समझना कि ये मार्ग बहुत सहज का मार्ग है। ये नहीं नहीं क्या तकलीफ है, तुम तो कपड़े उतारो और बन जाओ मुनि, कि ऐसी मार्ग में खींचतान ज्ञानी नहीं करते। ज्ञानी ना तो धोखे में रहते हैं और ना किसी को धोखा देते हैं। अपने परिणामों की परख ज्ञानियों को होती है और अपने परिणामों की स्थिति और वर्तमान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को देख करके वर्तन होता है, इसको बोलते प्रारब्ध। और भावना ऐसी उछलती हुई कि जिस उछलती हुई भावना में केवल ज्ञान मिलता हो तो अभी का अभी ले लेवे, नहीं हुआ नहीं हुआ। कृपालु देव का भी ऐसा ही था कि श्रीमद वो अपूर्व अवसर की जब उन्होंने भावना भाई तो लोग बहुत से लोग, गुरुदेव ने प्रवचनों में प्रश्न उठाया कि लोग बहुत मस्करी करते थे। क्या मस्करी करते थे? कह रहे मुनि होते थे तो कौन रोकता था, हो जाते। कि भाई साहब होना ये कोई खेल है ना? वो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानते हैं, शरीर की अवस्था को जानते हैं, वर्तमान में इस दशा में उसका निर्वाह हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, वो सब चीजों की ख्याल में लेते हैं, है ना। मेरा वर्तमान में इतना पुरुषार्थ है कि नहीं। भावना और पुरुषार्थ दो अलग अलग चीज है, भावना और प्रारब्ध दो अलग अलग चीज है। नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए ज्ञानी कुछ नहीं करते कि लोग मुझे बाहर से देखें और बड़ा माने। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जानते हैं कि हमें फल अपने परिणामों का लगेगा। दुनिया हमारे संबंध में क्या मापदंड रखती है उससे हमारे परिणामों में कोई, उससे हमारे परिणामों में कोई अंतर नहीं आने वाला, न उसका हमें कोई फल मिलने वाला। बात सही समझ में? तो यहां कहा कि क्या कहा कि दृढ़त्व तो आत्मा में ऐसा प्रकाशित होता है परंतु कितनी ही निरुपायता है। निरुपायता का मतलब क्या? कि भावना होने पर भी जहां अपना वश नहीं चले उसको बोलते निरुपायता। निरुपायता मतलब यह नहीं कि प्रमाद है, लेकिन भावना है लेकिन वो कार्य होना कि नहीं होना वो अपने वश की बात नहीं होवे तो उसको बोलेंगे हम निरुपायता। भावना तो हमारी बहुत होती लेकिन कार्य नहीं होना है तो नहीं होता, हम क्या करें? तो क्या करेंगे अपन, क्या बोलेंगे कि भाई हमारी भावना है लेकिन होने योग्य होता है, हम क्या करें उसमें? ऐसा ही होना है, ऐसा ही प्रारब्ध है ना, ऐसा होता है। ये ऐसा होता है कि नहीं? तीर्थंकर आते हैं ना, तीर्थंकर जन्म लेते हैं जब, ये तो अपन कृपालु देव की, गुरुदेव श्री की बात, अभी तीर्थंकरों की बात करो कि तीर्थंकर का तो नक्की होता है ना कि उसी भव में नियम से मोक्ष जाएंगे। फिर आदिनाथ को 83 लाख पूर्व केवल ज्ञान की भावना तो थी, सम्य दर्शन लेकर के आए थे, पिछले जन्म से सम्य दर्शन, पिछले जन्म से नहीं पिछले जन्मों से, एक जन्म की बात नहीं है। यहां तो कृपालु देव हो, गुरुदेव श्री हो, अरे आचार्य कुंद कुंद जैसे समर्थ वितरागी संत हो, इन सभी ज्ञानियों ने ये पंचम काल में यहां पर सम्य दर्शन प्राप्त किया है ना। वो तो पिछले जन्म से लेकर के आए। क्या कारण था कि 83 लाख पूर्व तक मुनि दशा के परिणाम नहीं आए, नहीं 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 हो पाया। ये सब, इन सब बातों पर यदि हम विचार करेंगे तो भावना और निरुपायता, इनका स्वरूप अपने को ख्याल में आएगा। एक एक प्रसंग आप प्रथमान योग में से देखेंगे तो भावना कैसी होती है और बाहर में उदय कैसा होता है, वो सारी बातें आती है। फिर यहां पे क्या कहते हैं कि वहां कितनी ही निरुपायता है, वहां क्या करना, क्या करना? कुछ नहीं करना, ज्ञाता होके रहना, और क्या कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि जहां निरुपायता हो वहां ज्ञातापना एकमात्र समाधान है। ज्ञातापने के पुरुषार्थ में, अपने पुरुषार्थ को अपने पुरुषार्थ बढ़ने पर वो सहज दशा आएगी, उसमें और कोई उपाय नहीं। फिर आगे कहते हैं, अच्छा जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना। कैसे पूर्ण करना? देखो दृढ़ता को पूर्ण करने का पुरुषार्थ भी क्या है, तो ज्ञातापने का पुरुषार्थ। कोई उसमें ये तनाव का मार्ग नहीं है, मुझे तो अभी का अभी इसी समय पूर्ण करना है, ऐसा है कि जो क्या कहा यहां पे कि जो क्या करना कि जो दृढ़ता, दृढ़ता क्या हुई, दृढ़ता क्या हुई है कि दृढ़ता यह हुई है कि अब मुझे जन्म मरण नहीं करना है। तो वो जो जन्म मरण नहीं करने की जो दृढ़ता आत्मा में हुई है, कहते उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। बस अगर निरुपायता में उपाय है तो क्या है कि ये रटन, रटन तो कर सकते हम, अभी मेरे को पूर्णता को प्राप्त, पूर्ण रटन का मतलब क्या होता है कि बार 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 वही चित्त में विषय रहे, रटन 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 रटन, पूर्णता की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति की एकमात्र रटन, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। वो उदाहरण आता है ना कि जैसे वचनामत में आता है कि जैसे बालक और मां, अब वो बालक खो जाए, मां से बिछुड़ जाए, अब उस बालक को क्या रटन रहती है, मेरी मां। उसके हर प्रश्न का उत्तर क्या होता है, मेरी मां। अरे यहां तक तो कोई बोलेगा तू कुछ खाएगा तो भी कहता है मेरी मां, तो क्योंकि मां को खाएगा क्या, क्या मतलब कि उसको मतलब यह कि उसको खाना नहीं है, उसको तो मां चाहिए। क्या पिएगा, उत्तर देगा मेरी मां। मतलब क्या कि मुझे पीने में कोई रस नहीं है, मुझे मां चाहिए। तेरी गली कौन सी, कि मेरी मां। मतलब क्या कि मुझे मेरा आता पता क्या है, मुझे कुछ भान नहीं है, मेरी मां। इसका नाम है रटन। आ गया, ऐसी रटन अपने में आई, उन्होंने अपनी परिस्थिति बताई कि ऐसी रटन, यही रटन हमको तो है। क्या हमें ऐसी रटन है? देखो अपने को अपने परिणामों का मूल्यांकन करते चलना है, अपन कहां खड़े हैं, किन भावों में अपन लोग खड़े हैं, है ना। तो ये रटन है। आगे देखो कितनी निरुपायता है, परंतु वहां क्या करना, फिर आगे लिखा जो दृढ़ता है उसे पूर्ण करना, बारंभ अवश्य पूर्ण करना, पूर्ण करना, फिर बाद में क्या लिखा, अवश्य पूर्ण करना। दो बार क्यों लिखा, पूर्ण करना अवश्य पूर्ण करना, मतलब क्या कि पूर्णता के बिना हमें कभी चैन पड़ने वाली नहीं है। अभी कौन सी भूमिका की बात चल रही है, सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका में भी ऐसी दृढ़ता, ऐसी रटन आवे और उसके बाद भी सम्यक दर्शन नहीं होवे, ये कैसे हो सकता है। सोगानी जी साहब का उदाहरण अपन सामने जगत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जब वो सोनगढ़ गए थे, उसके पहले उनको आत्मधर्म मिले थे, वो सारी घटना आपको पता है, लेकिन सोनगढ़ गए तब उनके परिणामों की क्या परिस्थिति थी, या तो विकल्प टूट जाएगा नहीं तो देह छूट जाएगी। बोलो, ऐसी अंदर स्वरूप प्राप्ति की झंझना, रटन, धगस, लगन, जो शब्द बोलना हो बोल दो। और जब ऐसी तड़फ लेकर के अंदर में गए और गुरुदेव श्री का एक वाक्य, वो वाक्य भी क्या, जो अपनी गाथा चल रही ना अभी 181, 82, 83, उन्हीं गाथाओं का प्रवचन, राग अने ज्ञान जुदा छे, गुरुदेव का एक वाक्य, क्यों साहब सभा में तो और भी बहुत लोग थे, सबने नहीं सुना, और गुरुदेव तो वो गाथा चल रही है तो गुरुदेव तो एक बात को एक प्रवचन में कितनी बार बोलते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना, हम ऐसे ऐसे नहीं जाने देते, 5-7 बार बोलते हैं, दृढ़ता के लिए बोलते हैं, पांच सात बार बोलते हैं इसका मतलब क्या, कि दृढ़ता के लिए बोलते हैं कि ये पांच सात बार बात हम बोल रहे हैं ना, माने ये बात वजन देने लायक है, इसलिए इस बात को पांच सात बार बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग संदर्भों में बोल रहे हैं। और वो बात सुनी और सुनने के साथ ही दूसरा सूरज मिथ्यात्व का नहीं देखा। गुरुदेव श्री के प्रवचनों की प्रचंड निमित्तता के दर्शन तो इसमें अपने को होते ही हैं कि गुरुदेव श्री का एक प्रवचन नहीं, एक प्रवचन का एक वाक्य भी एक जीव के लिए नहीं बल्कि अनंत जीवों के लिए अनंत जन्म मरण के अंत का कारण बन सकता है। निमित्तता ऐसी उसमें, लेकिन उपादान की योग्यता तो खुद की चाहिए। पानी बहुत बरस रहा हो लेकिन अपने पास कितना आएगा, जितना अपना पात्र होगा। अपने पास कटोरी होगी तो कटोरी में भरेगा, कटोरा होगा तो कटोरे में भरेगा, बाल्टी होगी तो बाल्टी में भरेगा, और ड्रम होगा तो ड्रम में भरेगा। अरे पानी कितना बरस रहा है उससे तुम्हें क्या लेना देना, और अपने पास कुछ नहीं होगा तो पानी बरसेगा और बह करके निकल जाएगा। अपन लोग कौन से में आते हैं वो अपने को नक्की कर लेने का, दूसरों से थोड़ी पूछना है। सोगानी जी ने क्या किया कि वो एक वाक्य सुना और उस एक वाक्य के आधार पर प्रयोग चालू कर दिया, और प्रयोग चालू कर दिया तो भाई साहब गुरुदेव ने जो राग से भिन्न परिणमते हुए, राग से भिन्न परिणमते हुए, फिर से ध्यान देना शब्द, राग से भिन्न परिणमते हुए वो वाक्य बोला था, क्योंकि ज्ञानी राग से भिन्न आत्मा ज्ञान राग से भिन्न है ये बात बोलते हैं तो केवल शास्त्र में लिखी नहीं बोलते, शास्त्र में लिखी और परिणति से मिलाई हुई बोलते हैं। दो बातें हैं, शास्त्र में तो लिखी ही है लेकिन वो बात उनकी परिणति में मिलती है और वो बात वो बोलते हैं। और पात्र जीव होता है वो पात्र जीव ज्ञानियों की उस अदृश्य परिणति को दृश्यमान कर लेता है अपने ज्ञान बल से, जिसको श्रीमद् जी ने कहा मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते। मुमुक्षुता तो पैदा हो हमारे में इतनी है ना, तो वो गुरुदेव उनके लिए महात्मा बन गए, समय दर्शन प्राप्त कर लिया, क्या बड़ी बात है इसमें, है ना, ऐसी धगस। तो वे यहां पे कह रहे हैं अवश्य पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना यही रटन है, समझ में आ गया। और ये रटन उनको समय दर्शन में कारण बनी है। रटन नहीं हो तो हम चले कि चलो आज गुरुदेव का प्रवचन सुने, क्यों सुने कि चलो आज अपने को समय दर्शन प्राप्त करना है ना, चलो आज समय दर्शन प्राप्त करना है, गलती से हो जाएगा समय दर्शन, इतना निठल्ला है समय दर्शन, कितनी गरज है ना स्वभाव की प्राप्ति की, कितनी धगस। यहां पे शब्द का प्रयोग किया, अब पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना यही रटन है। शब्द भी गजब के है, कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं, शब्द भी देखो कि यही रटन है। परंतु जो कुछ आड़े आता है उसे एक और करना पड़ता है। क्या आड़े आता है, जो कुछ आड़े आता है उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात अर्थार्थ क्या, तो उनने अर्थ किया अगला कि खिसकाना पड़ता है और उसमें काल व्यतीत होता है, जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना जब तक यथा योग्य जय न हो, तब तक ऐसी दृढ़ता है उसका क्या करना, कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करे तो वैसा स्थान कहां है कि जहां जाकर रहें। ये सब प्रश्न उठाए खुद में, खुद के चिंतन में प्रश्न उठाए, देखो ये पैरा पूरा पढ़ते हैं पहले अपन, अर्थात वैसे सत कहां है कि जहां जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें तो फिर अब क्या करना। इतना इतने प्रश्न, कितने कितने प्रश्न उठाए ये खुद के चित्त में 23 वर्ष की उम्र में सम्यक्त के निकट की भूमिका में उठे हुए प्रश्न हैं, है ना। अपने चित्त में भी ऐसे प्रश्न स्वभाव की प्राप्ति की धगस को लेकर के उठें और वो प्राप्ति नहीं होवे, ये तीन काल में संभव नहीं है। तो पहला क्या कहा, पहला यहां से शुरू किया, पहले तो आ गया दृढ़ता को, दृढ़ता को बनाए रखते हैं। उसके बाद क्या कहा उन्होंने, देखो, परंतु जो कुछ आड़े आता है उसे एक और करना पड़ता है। आड़े क्या आता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है। देखो कभी कभी विचार करो कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे समझ लो अपन मार्ग को, अपन को ये पता है कि भाई ये जो बात कह रहे हैं ये बात तो सही है, समझना, लेकिन अपना पूर्वाग्रह क्या होता है, अपना पूर्वाग्रह किस तरह का होता है कि आज तक तो अपन ने ऐसा किया, अब आज अपन ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये जो सबसे बड़ा चक्कर है ना अपने यहां, लोग क्या कहेंगे। देखो गुरुदेव श्री थे, गुरुदेव श्री को समयसार मिला। अपन गुरुदेव श्री का उदाहरण इसलिए लेते हैं कि गुरुदेव श्री के सारे जीवन से अपन लोग परिचित हैं, है ना, इसलिए अपन गुरुदेव श्री के उदाहरण मुख्य रूप से लेते हैं। देखो गुरुदेव श्री को समयसार मिला, अभी समझना बात को, अभी समयसार मिला और समयसार मिलने के पहले दिन, जिस दिन उनको समयसार मिला उसी दिन उन्होंने एक रिजल्ट निकाल करके दिया। किसको, दामोदर सेठ ने दिया था ना समयसार, जिसके लिए गुरुदेव श्री अंतिम दिन तक बोलते थे प्रवचनों में, लास्ट लास्ट के प्रवचन भी सुनोगे ना तो बोलते थे घना अभिमानी है तो घनी विपरीत दृष्टि, ऐसा बोलते थे। तो उस सेठ ने उनको समय सार ला करके दिया, उसको तो कोई कदर नहीं थी कि कौन सा महाराज के काम आएगा, अपने तो कोई काम का है नहीं, तो दिया। गुरुदेव श्री ने चार पन्ने पलटे होंगे, दो चार पन्ने पलटे और पन्ने पलट करके गुरुदेव श्री ने एक रिजल्ट निकाल करके दिया, सेठ यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ध्यान से सुनना, अभी एक 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 बात को सुनना तो ख्याल में आएगा, इसमें ये जो पूरा बिंदु है वो ख्याल में आएगा कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, गुरुदेव श्री सन 70 में दीक्षा ली और 8 साल तक लगातार श्वेतांबर साहित्य का पूरा उन्होंने अध्ययन किया, भगवती सूत्र को 17 बार पढ़ा और जब ग्रस्त दशा में थे तब भी वो यही करते थे। गुरुदेव कहते थे हमारा तो यही व्यापार था, हूं तो दुकान पर शास्त्र बांसतो हो, तो ऐसा गुरुदेव बोलते ना। अभी मेरा प्रश्न ये, तो देखो गुरुदेव ने किसी शास्त्र के प्रति ये शब्द क्यों नहीं व्यक्त किया उनके किसी शास्त्र के प्रति कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। पॉइंट समझते जाना, अभी ये आगे आएगी बहुत, इसमें बहुत रहस्य इस बात इन बातों में छुपा है। आ गया पहली बात कि समय सार मिला और मिला अभी पूरा पढ़ा नहीं। एक ये भी हो सकता था, अरे ये तो दिगंबरों का शास्त्र है, अपना क्या काम है इसमें, होनहार निकट में सम्यक दर्शन की उपलब्धि की योग्यता, सम्यक दर्शन की उपलब्धि की योग्यता, ये सब थी ना। समय सार मिलते ही पढ़ने का परिणाम आया और पढ़ करके सेठ को रिजल्ट निकाल करके दे दिया, सेठ अशरीरी होने का ये शास्त्र है। अभी ध्यान से सुनना, अब वो शास्त्र उनको मिल गया है ना। अब मिलने के बाद जो उनकी परिणति में मोड़ आया कि दिन रात समय सार का अध्ययन, दिन रात समय सार का अध्ययन। मैं आपसे पूछता हूं कि गुरुदेव के पास, गुरुदेव कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, अपने जैसे कोई आदमी हो है ना तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव की कीमत क्या थी उस संप्रदाय में, छुपी नहीं है ना किसी से, छुपी नहीं है कि उस संप्रदाय में जिनको गुजरात का कोहिनूर माना जाता हो, सौराष्ट्र का कोहिनूर माना जाता हो और सारा संघ जिनके पीछे पागल की तरफ घूमता हो, माने एकदम दीवाने, जिसको बोलते ना आज की भाषा में कि गुरुदेव के नाम के दीवाने थे लोग, अब ऐसे गुरुदेव को सत्य मार्ग की प्राप्ति के लिए, ध्यान से सुनना, कि जो लोगों का समुदाय, जो मान प्रतिष्ठा सामान्य जनता के, सामान्य लोगों को अगर वो मान प्रतिष्ठा मिले और सामान्य लोगों को वो सारा समुदाय मिले तो वे उसे अपना गर्व महसूस करते हैं। समझना बात को, क्या करते हैं वो? अपना गर्व महसूस करते हैं। गुरुदेव के लिए वो क्या था? मैं आपको कई प्रसंग ऐसे बता सकता हूं जिसमें कि गुरुदेव के लिए क्या था कि गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के लिए कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवरोधक है। क्या मतलब? कि अगर गुरुदेव उस संप्रदाय में इतने प्रसिद्ध साधु नहीं होते और मान लो उनको समय सार मिला और समय सार मिलकर के उनको लगा कि ये दिगंबर धर्म परम सत्य है, उनको परिवर्तन करने में, दिगंबर धर्म में दीक्षित होने में क्या परेशानी थी? परेशानी काय की थी? कि लोगों का इतना समुदाय और इतनी प्रतिष्ठा कि जब हम एक सड़ी गली प्रतिष्ठा, जिसको प्रतिष्ठा नहीं कह सकते अपन, लेकिन एक सामान्य अपनी मान्यता, उस मान सड़ी गली मान्यताओं को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए, है ना। और गुरुदेव ने उस प्रतिष्ठा को अवरोधक कारण समझा। हजारों की भीड़ में गर्जने वाला सिंह सत्य के लिए सोनगढ़ के एकांत में जाकर के विराजमान हो गया। यह है अवरोधक कारण। जो अवरोधक कारण होते हैं ना, ऐसे अवरोधक कारण अगर आ जाएं तो उन्हें हटाने पड़ते हैं। का मतलब क्या? हटाने पड़ते, क्या हटाने पड़ता है, क्या हटाना पड़ता है उसमें? क्या विचार, एक, एक एक बात का विचार करो जरा। बहुत खतरनाक है बहुत सी चीजें। ज्यादा मान प्रतिष्ठा हो ना तो वो भी खतरनाक कम नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्ग सत्य ये लग रहा और गुरुपना किसका। और गुरुदेव क्या बोलते थे? मुझे ऐसी जगह परिवर्तन करना है कि मेरे निमित्त से लोगों को कसाई नहीं हो गए। बोलो क्या, कितने उज्जवल परिणाम। तो ये सब आए ना, क्योंकि मार्ग प्राप्त, देखो मार्ग सत्य सनातन मार्ग ये है। अब ये सत्य सनातन मार्ग है तो निशंक रूप से मार्ग की प्रसिद्धि, मार्ग की प्राप्ति तो है ही, है ना। और उन्होंने वो सब किया, नहीं नहीं चिंता की। अवरोध इस तरह, जो अवरोधक हो तो अवरोधक कारणों को क्या करना पड़ेगा? कि अवरोधक कारणों को हटा, हटाने का मतलब क्या होता है? कि उनको हटाने का मतलब क्या होता है? कि उनसे हम हट जाएं, वो भी उन्हीं को हटाना हुआ। अब तुम सारी सबको तो हटा नहीं सकते, कोई भी ऐसे एक कोई भी, और भी बहुत सारे विचार अपन कर सकते। जब कोई भी व्यक्ति सत्य के मार्ग में आता है, हमारे प्रदेश में यह बहुत चर्चा है, यह बहुत चलता है कि जब कोई भी गुरुदेव का अनुयायी बना, कोई भी व्यक्ति गुरुदेव का अनुयायी बना तो सारे रिश्तेदारों ने उसे परेशान किया है। अरे यहां तक पति बन गया गुरुदेव का अनुयायी और पत्नी नहीं बनी तो पत्नी ने, और पत्नी ने पति को परेशान किया, या पत्नी ने पति को परेशान किया है। क्या करें? अभी अवरोधक कारण हो गए ये, जो क्या करें उसको, उन क्योंकि दो बातें हैं कि या तो उनको मुख्य करके मार्ग से च्युत हो जाओ, या मार्ग की प्राप्ति के लिए आगे बढ़कर उनकी अवगणना कर दो। क्या करना, क्या करना योग्य है नक्की करो ना। अपने पुराणों में उदाहरण आता है, राजा सैनिक और रानी चेलना कट्टर जैन धर्मी और राजा सैनिक बौद्ध मतावलंबी, और छल कपट के साथ रानी चेलना से विवाह हुआ। वो प्रथमान योग की कहानी में नहीं सुना रहा हूं, खाली मैं उसका सार आपको बता दे रहा हूं कि वो विवाह हुआ प्रथमा, जब वो रानी चेलना का विवाह हो गया और जब उसे ये पता लगा कि यहां तो जैन धर्म का कुछ भी नहीं है, यहां तो सर्वत्र बौद्ध धर्म ही है, तो रानी उदासीन रहने लगी। अभी करे क्या, निरुपायता तो बहुत है। भावना ऐसी है कि पूरे नगर में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो और परिस्थितियां ऐसी है और राजा के सामने बोले क्या। लेकिन राजा से उसने जैन धर्म का पालन करने की छूट ले ली और छूट लेने के बाद उसने जिस तरह से स्वयं सम्यक तो रत्न से सुशोभित थी और बाद में जिस तरह से जैन धर्म की प्रभावना की वो आज आपसे और हमसे छुपी नहीं है। राजा सैनिक रानी चेलना के बदौलत इस मार्ग के अनुगामी हुए। कैसे परिणाम और कैसे परिणाम, 3 दिन पहले तुम्हारे गुरु के गले में सर्प डाल के आ गया, 3 दिन हो गए उसको। तो रानी चेलना ने कहा कि तुमने गुरु के गले में क्या सर्प डाला, तुमने अपने में नरक का बंदोबस्त कर लिया। अरे कभी का भाग्य होगा, भाग्य होगा, मेरे गुरु होंगे और उपसर्ग किसी ने निवारण नहीं किया होगा तो आज भी उसी दशा में मिलेंगे, जाओ। हुआ क्या भैया जरा बताना। तीन दिन बाद गए, जाके देखा मुनिराज उसी मुद्रा में विराजमान है। लाखों चीटियां, कभी कभी तो सोच के दया आती है कि लाखों चीटियां जिनके शरीर को खा गई है, उपसर्ग निवारण किया, ध्यान टूटा, सद्धर्म वृद्धि रस्तु। क्या किया तुम्हारे को सद्धर्म की वृद्धि? ओ ऐसे भी त्रागी मुनि, मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया और ये मेरे को भी धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। एकदम परिणाम में परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद ये मन में, अभी जैन धर्म तो जानता नहीं था, तो ये परिणाम आया कि ए मुनिराज के गले में मैंने सर्प डाल करके बहुत पाप किया, इसका प्रायश्चित यह है कि मैं अपनी गर्दन काट के मुनिराज के चरणों में चढ़ा दूं। मुनिराज बोले, प्रभु राजन आत्महत्या महापाप है। फिर भौचक्का, तो मेरे मन की बात इनने कैसे जानी? तो रानी चेलना ने संबोधन दिया कि तुम इस भव की बात करते हो, ये तो तुम्हारा पिछला और अगला जन्म सब बताने वाले हैं, अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं। और वो सारी घटना हुई और आज वो राजा सैनिक का जीव सम्यक दर्शन ही नहीं प्राप्त किया, तीर्थंकर भगवान महावीर की सभा में मुख्य श्रोता हुए। 16 कारण तीर्थंकर प्रकृतियों का बंद किया और तीर्थंकर प्रकृति बांधी। और सबसे बड़ी बात यह कि अगले 24 में नरक से निकल करके होने वाले पहले तीर्थंकर होंगे। आप सोचो जरा, मन आप किसी भी ज्ञानी का जीवन पढ़ लो, आपको उसमें से ये सब बातें मिलेंगी कि किस किस तरह के अब रानी चेलना किस तरह उसने अवरोधक कैसे हटे, कैसे क्या क्या हुआ, सब का विचार कर लो, एक एक का विचार करो, आपको ख्याल में आएगा कि कैसे कैसे इन ज्ञानियों ने मार्ग को प्राप्त किया, किन किन परिस्थितियों में गुजरे, किन किन अवस्थाओं में गुजरे, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं चूके तो मार्ग को प्राप्त कर लिया। बाद में तो बहुत चिगाने आए राजा सैनिक को, क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा ना, अब उसके उनके चेले चपाटे भी बहुत थे, वो बौद्ध गुरु थे ना, और बौद्ध गुरु अपना सार साथ है, उनको समझाने आए, अरे तुम किसके चक्कर में आ गए। फिर एक बार डामाडोल हुआ। एक कहानियां पढ़ो तो सही, ये जो श्रीमद जी के पत्रांक है ना, आपको एक एक प्रथमान योग के ग्रंथ में इन पत्रांकों के दर्शन होंगे, पढ़ो तो सही कहानियां उठा के। तो फिर वो चक्कर में आ गए, डामाडोल हो गए, डामाडोल हो गए तो फिर मुनियों की परीक्षा करने का विकल्प आया, तो उन्होंने अपने मकान में गंदगी गड़वा दी। अब गंदगी गड़वा दी, मुनिराज आर करने आएंगे तो पता लग जाएगा, तो रानी चेलना समझदार थी, उसने समझ लिया क्या माजरा है। तो जब भी मुनिराज आए, 3 उंगली, हे त्रिगुप्ती के धारक मुनिराज, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आर जल शुद्ध है। मुनिराज समझ गए कि त्रिगुप्ती के धारक संबोधन इसने क्यों लगाया, किसी के एक गुप्ती नहीं थी, किसी के दूसरी नहीं थी, किसी के तीसरी नहीं थी, चले गए। बहुत सारा लंबा चौड़ा कथानक है। और इस तरह जाकर के राजा सैनिक को बाद में दृढ़ता से इस मोक्ष मार्ग में स्थापित हुए और आज तीर्थंकर के रूप में अपन लोग उनको अर्घ चढ़ाते प्रतिदिन। सोचो जरा, नरक में नारकी है, अगले भाव में, अभी तो अभी अपन 24 तीर्थंकरों की पूजन करते हैं ना, सारे तीर्थंकर सर्वार सिद्धि से आए, सर्वार सिद्धि से आए, फलाने स्वर्ग से आए, गर्भ कल्याणक में पूजा का अर्घ चढ़ाते थे, ये बोलते हैं ना, अभी क्या बोलेंगे अगली 24 में। प्रथम नरक से आए, जो भी उनकी माता पिता का नाम, ऐसे बहुत से तीर्थंकर देखो। अब उसमें वो क्या करे, सम्यक दर्शन है लेकिन निरुपायता है, पूर्व में बांधा है, ये सब विचार करो कि क्या निरुपायता है, उसमें उनकी दृढ़ता कैसी है, उसमें उनकी भावना कैसी है, उसमें उनने किन प्रतिबंधों को हटाया, उनमें वो किस तरह आगे बढ़े, ये एक एक ज्ञानी पुरुष के जीवन से अपने को सीखने और समझने योग्य है। इसमें इतने प्रश्न उन्होंने उठाए जिनमें देखो कि जिसमें ये बात आई ना लास्ट में, ये बात कितने प्रश्न उठाए, आज ये प्रश्नों को याद रखना खाली कि पूर्ण यही रटन। परंतु जो कुछ आड़े आ जाता है उसे एक और करना पड़ता है, अर्थात खिसकाना पड़ता है। खिसकाना पड़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि खिसकाना पड़े या खुद को खिसकना पड़े। अपन खिसक जाए तो भी उसको खिसकाया ही बोलेंगे अपन, है ना, तो वो पड़ता है और उससे उसमें काल व्यतीत होता है, फिर का जीवन चला जाता है, उसे न जाने देना तब तक यथा, जब तक यथा योग्य जय न हो। ये बहुत सारे प्रश्न है जो छोड़ रहे हैं अपन, आज कल चर्चा करेंगे कि जब तक यथा योग्य जय न हो तब तक ऐसी दृढ़ता है, इसका क्या, उसका क्या करना, प्रश्नवाचक डाला, क्या करना, कदापि किसी तरह उसमें से कुछ करे तो वैसा स्थान कहां है कि जहां जाकर रहें। ये भी एक प्रश्नवाचक डाला, अर्थात वैसे सत कहां है, या मेरे भी बिल्कुल संति है वो, मेरे उसमें क्या है, वो बिंदी गायब है पीडीएफ में, एक मिनट। ऐसे संत कहां हैं, इसमें बिंदी गायब है, ऐसे संत कहां हैं कि जहां जाकर इस दशा में बैठकर उसका पोषण प्राप्त करें। ये इतने प्रश्न उनने डाले हैं, प्रश्न मार्क डाले हैं, तो फिर अब क्या करना, तो ये प्रश्न और फिर क्या करना, उसके बाद फिर क्या करना, उसमें बहुत जोरदार उन्होंने बातें कही है, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। बाकी के जो प्रश्न उठाए उन्होंने, उन प्रश्नों पर भी अपन कल और विचार करेंगे कि क्या क्या इसमें वो कहना चाहते हैं।